मुख्य समाचारों में 16 और 17 साल के किशोरों के लिए अब कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर शॉट। वृद्ध देखभाल क्षेत्र में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन। ऑस्ट्रेलियन एश बार्टी और एमा मैककॉन विश्व खेल पुरस्कार के लिए हैं आमने सामने। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी ATAGI ने 16 और 17 साल की आयु के लिए बूस्टर शॉट देने की हरी झंडी दिखा दी है और इससे लगभग 3,80,000 किशोर अपने बूस्टर शॉट प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। कैनबरा से बोलते हुए फेडरल स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि वो इस फैसले से खुश हैं क्योंकि देश भर के छात्र अब स्कूलों को लौट रहे हैं।
ATAGI, the Australian Technical Advisory Group on Immunisation, has provided the second green light that's been necessary to make boosters available for 16 to 18-year-old Australians. What that means is that there will be an immediate group of 380,000 teenagers who will be eligible to have the booster. This is the Pfizer booster, which has been through both the TGA and now the Technical Advisory Group on Immunization.
ATAGI ने दूसरी और तीसरी खुराक के बीच 3 महीने के अंतराल की सिफारिश की है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी 16 और 17 साल की आयु के किशोरों को बूस्टर शॉट देने के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। कैनबरा हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट पीटर कॉलिग्नन का कहना है कि बूस्टर से दुष्प्रभाव हो सकता है, खासकर युवा पुरुषों में।
To know whether we should make it in effect compulsory for everybody to have a third vaccine if they're younger. But we need to keep an open mind. And for people who want it, at the moment, it will give you a benefit. How much extra benefit, we don't know. So I wouldn't say don't have it. But equally, I think we should be careful about over promoting it or particularly making it compulsory for those younger age groups until we get more data.
फेडरल स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नाम वाले टैक्सिंग घोटाले में शामिल मंत्री के नाम का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। एक अज्ञात मंत्री और न्यू साउथ वेल्स की पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस बेरिजिक्लियन के बीच लीक हुए संदेशों में श्री मॉरिसन को पूर्ण मनोविकार यानी कम्प्लीट साइको करार दिया गया था। श्री हंट का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि एक फेडरल मंत्री ने इस तरह के संदेश भेजे होंगे। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि कैबिनेट पिछले 60 वर्षों में सबसे अधिक एकजुट है।
I can speak for the whole of the cabinet. I just say release it in full because there's nobody in the cabinet that is remotely worried about it being released and there's everybody in the cabinet.
वृद्ध देखभाल क्षेत्र में मुद्दों को देखने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। जुलाई के बाद से 777 वृद्ध देखभाल निवासियों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है, जिनमें से इस जनवरी में ही 500 से अधिक हैं, और सभी कार्य शिफ्ट्स में 1/4 कर्मचारियों की कमी भी है। फेडरल मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर पॉल कैली का कहना है कि वो इन मौतों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
We'll be setting up a specific task force in the department to look at that and to do everything we can to get more detail about the issues that particularly in aged care but more broadly in the community related to those people who have passed away.
लेबर नेता एंथनी एल्बनीसी ने वृद्ध देखभाल सेवा मंत्री रिचर्ड कॉलबेक से त्याग पत्र देने का आह्वान किया है। बुधवार को एक संसदीय समिति में श्री कॉलबेक ने संसदीय कोविड जांच के बजाय होबार्ट में एशेस क्रिकेट टेस्ट में भाग लेने के अपने फैसले का बचाव किया था। श्री एल्बनीसी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसे मंत्री की आवश्यकता है जो जिम्मेदारी ले सके।
I'm angry because I've spoken to the families of aged care residents who've had enough. Richard Colbeck must resign today. If Richard Colbeck does not resign today, the Prime Minister should sack him. He is simply incapable of fulfilling the task of looking after the interests of old, vulnerable Australians.
फेडरल मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रोफेसर पॉल केली का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ओमिक्रॉन लहर के शिखर के पार है, यानी उससे निकल चुका है, और उन्होंने चेतावनी दी कि ये आखिरी लहर नहीं होगी। उनका मानना है कि सर्दियों में एक और ओमिक्रॉन का प्रकोप और फ्लू की लहर होगी। प्रोफेसर केली का कहना है कि कोविड 19 समुदाय में वर्षों तक रहेगा, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो गलत साबित हों।
We are definitely past our peak in Australia in terms of this Omicron wave. It will not be the last Omicron wave we will have, but it will not be the last wave of COVID we will have. We are learning to live with this virus, and that means that we have to have realistic expectations about what will happen this year and probably subsequent years in terms of COVID circulating in the community.
विक्टोरिया में इस समय कोविड 19 से ग्रस्त 752 मरीज अस्पताल में हैं और 32 कोविड मौतों के साथ विक्टोरिया ने 12,157 नए संक्रमणों को दर्ज किया है। क्वींसलैंड में 9 कोविड 19 मौतें और 8,643 नए मामलों को दर्ज किया गया है। वर्तमान में वहां अस्पताल में 749 कोविड मरीज हैं और 47 गहन देखभाल में हैं। न्यू साउथ वेल्स में 38 कोविड 19 मौतें और 12,632 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अस्पताल में 2,578 लोग वायरस से ग्रसित हैं, जिनमें से 160 गहन देखभाल में हैं। इतिहासकारों ने पुष्टि की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू पोर्ट हार्बर पर बर्बाद हुआ जहाज HMB एवेंडर है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने किया था। 1770 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उतरने से पहले कुक ने दक्षिण प्रशांत के चारों ओर समुद्री यात्रा की थी। एवेंडर को 244 साल पहले रोड आइलैंड के न्यू पोर्ट हार्बर में ब्रिटिश द्वारा कुचल दिया गया था और 2 शताब्दियों से अधिक समय से ये वहां पड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलियन नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन सम्पसन का कहना है कि जहाज की पुष्टि से समुद्री पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के 22 साल के काम का समापन हुआ है।
इट्स आर्ग्युएबली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वेसल्स इन ऑस्ट्रेलियाज मैरीटाइम हिस्ट्री। And yes, the Australian National Maritime Museum, together with our partners RIMAP, have found the wreck of Cook's Endeavour.
न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि वो 5 चरणों की योजना में आगंतुकों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोलेगा। 27 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से टीका लगाए गए न्यूजीलैंड के लोग होटल क्वारंटीन किए बिना देश लौट सकेंगे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंटा आर्डन का कहना है कि किवीज होटल के बजाय घर में आइसोलेट कर सकते हैं।
In 5 steps, we move forward with our plan to reconnect New Zealand to the world. Beginning with step 1. Today I'm announcing that the fully vaccinated Kiwis and other currently eligible travellers from Australia will be able to travel to New Zealand from 11:59 p.m. Sunday, 27 February. And instead of going into MIQ, we'll be able to self-isolate.
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के बजट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि ये नए अवसर नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बने और इसकी नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। उनका कहना था कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, अगर उसका राजनीतिक एंगल छोड़ दें तो उसका स्वागत हुआ है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा कि देश हर तरफ से विरोधियों से घिरा हुआ है और क्षेत्र में अलग थलग पड़ गया है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 53 रुपए 32 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलियन एश बार्टी और एमा मैककॉन एक वैश्विक खेल पुरस्कार के लिए आमने सामने हैं। टेनिस में विश्व के नंबर 1 एश बार्टी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का ताज जीता, और रिकॉर्ड बनाने वाली ओलंपिक तैराकी चैंपियन एमा मैककॉन को लॉरियस 2022 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। इसका अर्थ है इसमें से कोई भी एथलीट कैथी फ्रीमैन के बाद ये पुरस्कार जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बन सकती है। एक अन्य ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक तैराक एरियन टिटमस को भी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को पर्थ में बहुत गर्मी रहेगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल हैं, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। और डार्विन में बौछारें रहेंगी, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।